حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، سيما الإمام المنتظر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يقرأ كل أمر حكيم. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. 23rd of Ramadan, Shab-e-Qadr ya Laylatul Qadr. Agar ke exact Shab-e-Qadr kaun si date hai, ye Allah ka itraaz hai. Secret of Allah jo humko nahi bataya gaya. Aur Imam-e-Masoom ne wajah yahi bataya कि अगर तुम लोग एक रात से ज्यादा रातों में इबादत करो तो तुम्हारा नुकसान क्या है, फायदा ही है। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि लैलतुल कद्र या शब-ए-कद्र आज की रात यानी 22वां रोजा खोलने के बाद शब-ए-23, शब-ए-कद्र अरबी जबान का भोजन है, जिससे डेराइव करके एक लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है और उसका समझना बहुत आसान। तब्दील, तब्दील जो हम उर्दू में कहते हैं भोजन की तब्दील, तब्दील बन गई, तब्दील बिगड़ गई, तब्दील बना लो, ये यही लफ्ज है कद्र। तो शब-ए-कद्र यानी तब्दील बनाने वाली रात, वरात जबान की तब्दील बनती। قرآن کریم نے اس شب-ए-قدر کا تذکرہ دو جگہوں پہ بہت واضح طور پر کیا ہے۔ پہلی آیت کیا پہلا تو پورا سورہ ہی ہے جو ہمیں کو یاد ہے، سورہ ایمان درنا۔ آج رات کے اعمال میں یہ شامل ہے کہ اس سورے کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ کیا کہنا ہے تو اس رات کو ہزار مرتبہ ون تھاؤزینڈ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر سکو۔ اچھا، اب یہ ایک مسئلہ ہے جس کو میں اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ آج کی رات بہت اہم رات ہے، لیکن ایک اشارہ کر دوں کہ لفظ ہزار جب آیت میں آئے، جب آیت میں آئے، تو ویسے تو اس کے ایکچوئل میننگ بنی ہوں گے کہ 999 کے بعد والا جو فیگر ہے ہزار۔ لیکن پرانے زمانے میں عربی کاؤنٹنگ جو کہ ہزار میں مکمل ہوتی تھی، ہزار سے بڑا ان کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ جیسے دنیا کے ہر ملک میں جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، جسے ہمارے یہاں امریکہ میں بل کہا جاتا، وہ پھر ایک سب سے بڑا ایک ہوتا ہے، کہیں 100 کا ہے، کہیں 500 کا ہے، کہیں 1000 کا۔ تو اب عربی میں ہزار، تو کبھی ہزار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی گنتی نہ ہو جائے تعداد۔ لیکن اب میں نے کہا کہ یہ تو خالی ایک اشارہ ہے بہت ساری حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، آج کل یہ اصل ٹاپک نہیں۔ تو ہزار مرتبہ سورہ نزل انا انزلنا کی تلاوت بھی آج کے اعمال میں سے ایک خبر ہے، کیونکہ آج کی رات اس کا قصیدہ، اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیت اور اس کا پرپز اور اس کی ہسٹری، یہ سب اس مختصر سے سورے میں آ گئے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 44 سورہ دخان، دخان یعنی اسموک، دھواں، آخری زمانے کی نشانی یہ بھی ہے کہ ظہور ایمان سے پہلے دھواں. لیکن وہی بات کہ ہر چیز ایسی ہے کہ میں خود اپنے آپ کو آرڈر دیتا پھر رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ نہ جانا ورنہ آج کا موضوع رہ جائے. تو یہ سورے کے اندر اس اسموک کا یا اس دھوئے کا تذکرہ تو ہے جو شاید ظہور ایمان کی ایک نشانی ہو، لیکن آگے چل کر بالکل شروع میں اس میں اس رات کا تذکرہ ہوا. آئیے اب اور جلدی جلدی ان آیتوں کا ترجمہ کریں، اس کے ذریعے پھر وہ چیز آپ کو یاد دلا دی جائے. کوئی مومن ایسا نہیں ہے، کوئی مومن ایسی نہیں ہے جسے شب قدر یعنی تقدیر والی رات کی اہمیت پتا نہ ہو. میری گفتگو کا مقصد تو صرف تھوڑا سا ریمائنڈر آپ کو دینا ہے، کچھ ایسے اعمال تقریر میں آپ کو کرانا جو عام طور پہ جو اعمال کا سیشن ہوتا ہے اس میں نہیں ہو سکتے. تو سورہ قدر کی آیتوں کا ترجمہ ہے کہ انہا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات، لیلۃ القدر، نائٹ آف قدر، نائٹ آف تقدیر، نائٹ آف ڈیسٹینی، اس میں نازل کیا. پھر قرآن میں ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم سینکڑوں کتابیں پڑھ لو، تم ہزاروں تقریریں کر لو، لیکن تم اس شب قدر کی اہمیت کو درک کر ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری عقل میں کبھی اس کی پوری فضیلت آ ہی نہیں سکتی. یہ وہی لفظ ہے جو معرفت کے حوالے سے معصومین کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یا علی تیری معرفت کو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. یہ شرط مدد کی بھی وہی فضیلت کے وہی اسٹیٹس ہے کہ ہم کتنا علی پہ بحث کریں، فضیلت میں، تقریر میں، غور و فکر، کتابیں، تفسیر، لیکن جو ایکچوئل شرط مدد کے اسٹیٹس ہے وہاں تک ہمارا یہ عمل جاری نہیں سکتا. قرآن نے کہا کہ انشاءاللہ کی سمجھ لو، جیسا ہم کہتے ہیں مولا کے بارے میں انشاءاللہ یہ ہے کہ علی جو خیر البشر، انشاءاللہ کر کے ہمیں کہہ دیا پہلی حدیث کے آگے کہ کوئی علی کی صحیح معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ اور رسول. لیکن بات شرط یہ کہ علی خیر البشر اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے. وما نبا فقط کفر، پوری حدیث سنیے، اور جو اس بات کا انکار کرے اس نے گویا کو اختیار کیا. تو اسی طرح قرآن نے بھی یہاں سمیٹ کے کہہ دیا تم شب قدر کی امپورٹنس یا سگنیفیکینس یا اس کا اسٹیٹس معلوم کر ہی نہیں سکتے، اور بس اتنا سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر. ہزار مہینوں سے برابر نہیں، اس سے زیادہ، زیادہ تو پھر کتنا زیادہ یہ قرآن نے نہیں. اور جو سورہ دخان کی آیت میں نے تلاوت کی اس میں اس کے لیے اور لفظ آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات. اس رات کا نام قرآن کریم نے رکھا برکت، یہ برکت والی رات. اب اس کے بعد سورہ دخان کی آیت میں بھی اور سورہ قدر کی آیت میں بھی جہاں پر میں نے تلاوت کیا، اس کے بعد پھر آج رات کے اعمال کی ایک لوجک بتائی جا رہی ہے. تو سورہ دخان میں آیا اتنا لگنا ہو کہ جائے گا مبارک رقم اتنا پورنا منظرین پی آج جو پڑا کو کل لو امر حکیم، آج رات تمہاری زندگی کے سارے معاملات میٹرز ایفیئر سے طے ہوتے، آج ڈسائڈ ہوتا ہماری اور آپ کی زندگی کے تمام معاملات کا. گھر کے پڑھانے کے لیے میں انسانی زندگی نہیں کہا، یعنی دنیا کے تمام معاملات کے بارے میں آج طے ہو رہا ہے. کورونا ڈیزیز کب ختم ہوگی آج رات کو طے ہو رہا ہے، پتہ ہوگا لاسٹ ایئر چل رہا ہے. یہ اللہ نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ کورونا ڈیزیز دنیا میں آئے گی، اور پھر آج رات کو یہ ڈیسائڈ ہو رہا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. ہمیشہ رہے گی، ویکسین مل جائے گی، ختم ہوگی، کتنے لوگ اس میں مزید بڑھیں گے. کیونکہ یہ تو بالکل برننگ ٹاپک ہے، اس لیے میں نے مثال بھی دی، مثال یہ ہے دنیا کے سارے معاملات چاہے سرداروں کے انسانوں سے ہیں، چاہے سرداروں دنیا کے دوسری چیزوں سے. ये तो सूरह बुखार जो आज आप तिलावत करेंगे आमाल का पाठ है उसमें यह आया बिहार युफरतो कुल्लो अमरिन है ये सारा मामले तय है और सूरह नज़ल में यह आया कि जब ये मामले तय हो जाएंगे तो फिर इसके बाद अल्लाह क्या करेगा तनज़्ज़ुल मलाइकातु व रूह फीहा बिइज़्ज़ रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र फिर ये सारे मामलात को लेकर मलाइका नाज़िल होंगे इस दुनिया में उतरे अल्लाह ने तय कर दिया आसमानों पर हमारी डेस्टिनी हमारे मुल्कों की जैसे इस दुनिया की जैसे तय हो गए अभी अल्लाह ने अपने पास नहीं रखा मलाइका के जरिए से इसको इस दुनिया में भेजा सलाम ये रात सलामती है हीरा हत्ता मसले फजर फजर यानी फजर का तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं और फजर का वक्त आ गया रात खत्म हो गई और तुमने अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं करा फिर वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मगर हमने फर्ज करके तय नहीं कराया कि हमें कोरोना से अपने और अपनी फैमिली को बचाना गाफिल रहे कोई रहे दूसरी बातों में लगे रहे जहन कर गया ही नहीं गया सलाम सलामती है बात रात को प्रॉब्लम ही हालत का मन करे फर्ज हो गई अजान इसको कन्फर्म कर दिया कि इससे अपनी तफी चेंज नहीं करा लिए तो जो मैंने लिखा है वैसे ही होगा बस अब पूरा साल जहन यही तो आयत है कुरान करीम की जिसको छठे इमाम ने वजूद इमाम जमाना की एक दलील भी बनाया तरह जरूर बनाया तो और रूह पिया बेजना और बेजने में कुल इमाम इमाम ने छठे इमाम ने इस आयत इमाम जमाना के लिए दलील बनाया ये रूह है इमाम जमाना के वजूद का इमाम ने कहा देखो कुरान करीम कह रहा कि रब अल्लाह के आलास फरिश्ते आ गए अमर लेकर आ गए जब ये बात कुरान ने कही तो एक आखिरी बात तो उनको कौन से सही जवाब में आ जाती है क्या चीजें होंगी ना कौन आ रहा फरिश्ते कहां से आ रहे हैं अल्लाह की तरफ क्यों आ रहे हैं मामला तो लेके आ रहे तो आखिरी बात कहां आ रहे किसके पास आ रहे तरह सर मलाइका कौन आ रहा है फरिश्ते कहां से आ रहे हैं इतने रबे क्यों आ रहे हैं मेरे पुल्ले अमर दुनिया वालों के मामला को लेकर वो फाइल लेके आ रहे हैं तो किसके पास आ रहे कहा कि मानना पड़ेगी एक ऐसी पर्सनैलिटी और एक ऐसा वजू कि जिसके पास हर शरीय मदद में मलाइका ये सारे मामलात को लेके आते हैं वो वही तुम्हारे जमाने का इमाम जो ना आज की रात की अमान मैंने एक मतलब किया कि 1000 तिलावत करना और आज की रात जितना हो सके जमाने के इमाम को याद करना है चुनाचे हर थोड़ी देर के बाद बताया जाए कि न बताया जाए अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न हसन सलावात का अलैहि वाला आबा ही की दुआ की तकरार करते रहना कि यही हमारे जमाने का इमाम है जिसके पास हमारे सारे मामलात की फाइल आ रही है जो आज की रात तय हो रहे हैं। उर्दू जबान की एक कहावत है जो सोया वो खोया आज की रात वाकई वो रात है जिस पर यह कहावत पूरी उतरती इस एक रात में हमारी जिंदगी के सारे मामलात तय हो रहे हैं हमारे पर्सनल मामलात भी और वो मामलात भी कि जो पर्सनल नहीं है मसलन ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी कैसी होगी पाकिस्तान की सियासत कैसी होगी ईरान और इराक के हालात कैसे सारी दुनिया के मामला यह रात अगर इंसान ने अपनी किस्मत को बना लिया यह ऐसा है कि अल्लाह ने कागज और कलम हमको दे दिया कि लो लिखो अपनी तकदीर लिखो जो तुम्हारा दिल चाहे जैसा तुम चाहते हो तुम खुद लिखो क्या तुम्हें चाहिए और मालूम हुआ कि हम बातों में लगे रहे गपशप में लगे रहे सोने में लगे रहे खाने पीने में लगे रहे आईफोन पे लगे रहे आईपैड पर लगे रहे वो कागज कलम इसी तरह रहा फजर के वक्त को उठा लिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में जब टाइम पूरा हो गया वो हमसे ले लिया गया अभी अल्लाह ने हमको कागज कलम दिया है और ये कह के दिया है कि अपनी तकदीर खुद लिखो जो तुम्हें चाहिए जैसा तुम्हें चाहिए अपना आइंदा साल कब ये रात जितने भी घंटे हों इस रात के चाहे वो हमारी सेहत का मसला हो हमसे मतलब खाली हम नहीं इस आइसोलेशन ने सारी दुनिया को ये बता दिया कि अकेला आदमी कोई चीज नहीं होता
हर जगह आई 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 करने वाला मैं, लेकिन आइसोलेशन ने बता दिया है कि आदमी माशरे से कट के नहीं रह सकता, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके दोस्त हैं, उसका फ्रेंड सर्किल है, ये सब आ जाते हैं। ये तो हम लोग इस्लाम कब से कह रहा, नहीं मानती थी ना वेस्टर्न दुनिया इस बात को, हर आदमी अकेला है, हर आदमी बस या शेख अपनी अपनी देख वाली पॉलिसी थी यहां की। लेकिन इस आइसोलेशन ने खुद उन लोगों को बता दिया कि जो वो समझ रहे थे गलत है, आदमी दूसरों से कट के नहीं रह सकता। दुआ के लिए हमेशा आपको ये उसूल बताया गया है कि अपने से पहले दूसरों के लिए दुआ करो, वो यही चीज थी। खैर, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अहम तो होंगी, लेकिन आज रात की अहम तरीन जो घंटे हैं उसमें नहीं, क्योंकि ये जाया ना हो जाए। तो आप इसे हद, आपसे मतलब आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, वो दुनिया भर के साहिबाने ईमान, वो दुनिया भर के इंसान जिनकी बीमारी आपको परेशान कर, तय कर ले, अल्लाह ने कागज कलम दे दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रिस्क, औलाद, बेटियों की शादियां, खानदानी झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, क्या और बीवी के खिलाफ औलाद की नाफरमानी। पैगंबर से शब कदर के लिए एक सवाल किया गया, शब कदर के लिए पैगंबर से एक सवाल किया गया, और मैं अक्सर यह जुमला, यह हदीस बयान करने से पहले कहता हूं कि आम हालात में आदमी को इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता, पाकिस्तान वालों से पूछिए, और शायद अब किसी हद तक इंडिया वाले भी, कि या रसूल अल्लाह इस शब कदर में हमारी सबसे अहम दुआ क्या होनी चाहिए। पैगंबर ने कहा अल्लाह से मांगो तो अपने लिए आफियत मांगो, सबसे बड़ी नेमत यही है जिसका हमको अंदाजा ही नहीं। जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं उनको यह नेमत इस वक्त मिली हुई है, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछें, जिसमें मैं भी शामिल हूं, यानी मैं भी बुजुर्गों के लिए इसमें आता हूं, तो इससे ज्यादा आफियत का जमाना हमने पाकिस्तान में देखा है और कराची में देखा, लेकिन कदर नहीं की उस नेमत की। फिर यह पता चला कि जब यह नेमत छिन गई तो पता चला, तो पैगंबर ने फरमाया आज रात की सबसे अहम यह दुआ, बाकी सारी चीजें बाद में, यह सेहत का मसला, यह रोजी का मसला, यह औलाद का मसला, यह शादी के मसले, यह बाकी सारी, यह आफियत बहुत अहम दुआ, दिल की गहराई से निकले, तोते की तरह कोई दुआ पढ़ाता चला जाए, हम पढ़ते चले जाए आमीन आमीन आमीन, वो नहीं, वाकान उसकी अहमियत का अंदाजा करते। तो ये सारी चीजें आज रात इस तरह से अल्लाह तय कर रहा है कि कागज कलम हमको दे दिया, लिखो जो तुम्हारा दिल चाहे अपने लिए लिखो, हां अगर इसमें कोई गलत चीज लिखोगे अल्लाह उसको करेक्ट कर लेगा। ये दुआ इफ्तिताह का जुमला, क्या खुदा तू जानता है बेआकिबत उमूर, तुझे पता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है, तो अगर कभी हम कोई गलत चीज की दुआ करें तो तेरा ही फैसला ठीक होता है, लेकिन अभी अल्लाह ने हमको दे दिया कागज और कलम इस रात। किस लिए कागज और कलम दिया? अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए, और फजर के वक्त मलाइका ये इमाम जमाना के पास लेके नाजिल होंगे। और यहां पर मैं ये एक बात भी बता दूं कि आज रात के अमाल में इसीलिए है कि आज की रात तकदीर बदलवाने की रात है। जैसा अब तक चला आ रहा है पिछले साल तक, यानी 22nd रमजान तक, जो आपकी और आपकी फैमिली और आपके घर में हो रहा है वो आज आप चेंज करा सकते हैं। तकदीर, अच्छा तकदीर तीन चीजों से बहुत आराम से बदल जाती। नंबर एक, सदका देने से। मैं तो घबरा रहा हूं, सदका एक ऐसा मौजू है कि एक घंटे की स्पीच तो इस पर हो जाए। और नंबर दो, दूसरे मोमिनों का ख्याल करने से। बनी इसराइल में वो नौजवान जो बहुत ही गरीब था, हमारे उर्दू में कहते हैं फला आदमी इतना गरीब है कि रोटी चटनी से गुजारा कर रहा है, उसके पास रोटी चटनी भी नहीं है, फाकों पे फाके, फाकों पे फाके, लेकिन अल्लाह से दुआ कर रहा। आखिर नबी वक्त ने बुला के कहा कि तुम्हारी तकदीर में मरते दम तक फाके थे, लेकिन तुमने इतनी दुआ की है कि अल्लाह ने तुम्हारी आधी जिंदगी चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी जिंदगी में 30 साल मजीद थे, अभी वो 30 के 30 साल गुर्बत के थे। अब वहां चूंकि इसका मसला गुर्बत, अगर हमारा मसला सेहत है तो मसलन ये पैगाम होगा कि 30 के 30 साल तुम्हारे लिए बीमारियां थी, लेकिन तुमने इतनी दुआ मांगी, इतनी दुआ मांगी, इतनी दुआ मांगी कि खुदा आधी जिंदगी तुम्हारी चेंज कर दुआ की वजह से। तो अब 30 में से 15 साल तुम्हारे पास गुर्बत नहीं रहेगी या बीमारी नहीं रहेगी या जो भी और प्रॉब्लम। और च्वाइस तुम्हारा कौन से 15 साल तुम्हें चाहिए, अच्छे वाले और कौन से एज इट इज जैसा अल्लाह ने शुरू से लिखा हुआ। कहा खुदाबंदा ये मसला खाली मेरा तो नहीं है ना, मेरी तो बीवी मेरे साथ है, फाके हैं तो दोनों के हैं, दौलत है तो दोनों फायदा उठाएंगे, इतनी इजाजत दे दी। ये सारा कन्वर्सेशन हो रहा है थ्रू नबी। या नबी खुदा क्या मुझे ये ऑप्शन मिल सकता है कि मैं मशवरा कर लूं? कहा जाओ कल आके बता देना। बीवी से बात हुई कि क्या किया जाए, कभी दिल ने कहा कि पैसे का तो मजा ही उस वक्त है जब आदमी जवान होता है, खाने भी मजा, घूमने में भी मजा, पहनने में भी मजा, अच्छे कपड़े जेवर, बुढ़ापे के अंदर तो वैसे ही ना कुछ खा सकते हैं, ना ताकत है कहीं घूमने की, ना कोई और मजा है, तो पहले पैसे ले लो बाद में गुर्बत। कभी कहा कि नहीं अभी तो जवान है, हाथ पांव चल रहे हैं, फाके हैं तो बर्दाश्त हो जाएंगे, बुढ़ापे में कैसे होगा, पैसे अभी गुर्बत बाद में दौलत। सारा दिन ये डिस्कस होता रहा, आखिर एक फैसला हुआ। नबी खुदा के पास नेक्स्ट डे गया और कहा कि हमें पहली आधी जिंदगी आराम वाली चाहिए। अगले दिन से इसके घर में खून बरसने लगा, अल्लाह ने गोया छप्पर फाड़ के इसको दे दिया, मिट्टी में हाथ डाले तो सोना बन गया, दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत। बीवी ने कहा कि देखो हमने गुर्बत देखी, हमें पता है कि फाका, बच्चों की भूख कितनी बुरी मुसीबत होती है, अल्लाह ने हमें इतने दिया, हम दूसरों को शेयर क्यों ना करें। चुनाचे महल्ले वाले भी, रिश्तेदार भी, इन सब को भी वो दौलत दी जा रही, और कोई कमी नहीं हो रही। वो तो अल्लाह का हमसे भी वादा कि जितना दूसरों को शरीक करोगे उतना अल्लाह तुम्हारी दौलत में इजाफा करेगा। वो तो हम बिला वजह डरे जाते हैं कि अगर दे देंगे तो कमी हो जाएगी। हां अपने आप पे खर्च करो वो कमी होती चली जाएगी। बात बहुत लंबी हो रही है क्योंकि सारे मौजूद दिलचस्प हैं। 15 साल गुजर गए, दोनों को याद भी है अल्लाह से हमने क्या वादा किया। शौहर बीवी ने कहा अच्छा आप कल से तैयार हो जाओ फाकों के लिए। तैयार है दोनों, झूठे मोमिन तो थे नहीं ना, मुखलिस मोमिन थे, तैयार हैं। अगले दिन रात को फरिश्ता इनके पास ख्वाब में आता, समझ गए क्यों आया। कहा कि हां हां कल से फाके, कहा नहीं फाके नहीं, कल से तुम्हारी वैसी ही जिंदगी है जैसी पहले थी। कहा ये कैसे हो गए? कहा जो तुमने राह खुदा में खर्च किया और अपने रिश्तेदारों का और गरीबों का ख्याल रखा, ये नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि पहले 15 साल तुम्हारी तकदीर बदली है दुआ की वजह से, आखिरी 15 साल तुम्हारी तकदीर बदली है तुम्हारी इस नेकी की वजह से। तो दो चीजें और इसमें आ गई, तीनों चीजें हो गई, तीन चीजें तकदीर बदल देती। नंबर एक सदका, वो हर एक को पता है कि सुबह सदका दो ताकि शाम तक की मुसीबतें दूर हो जाए, शाम को सदका दो ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग तक की मुसीबतें दूर हो जाए। और नंबर दो दूसरे मोमिनों का, बल्कि मुसलमानों का, बल्कि इंसानों का ख्याल करना। और नंबर तीन तो वह भी आपने सुना दुआ, और ये इसके लिए भी कुरान की बहुत वाज़ेह आयत है। एक ही नबी ऐसे हैं जिनकी खबर एक तरह से गलत निकली, वैसे तो गलत नहीं निकली लेकिन एक तरह से। हर नबी ने जब अपनी कौम से कहा तुम पर अजाब आ रहा है तो आके रहा। हजरत यूनुस ने अपनी कौम से कहा अजाब आ रहा है, कौम ने दुआ मांगी और ऐसी गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि अजाब आके सरों से टच होके वापस चला गया दुआ की वजह से। अजाब खुदा तक नबी के कहने पर जो अजाब आए वो दुआ की ताकत से चला जाता है। तो ये बीमारी, ये गुर्बत, ये कारोबार का लॉस, ये जॉब में कमी, ये औलाद के प्रॉब्लम, ये बेटियों की शादियां, ये क्या मसले हैं उसके सामने। तो अब ये तीन चीजें तकदीर बदलती है, तीनों को आज की रात हमें इस्तेमाल करके, वैसे तो इसके बगैर भी अल्लाह ने कहा कि आज की रात तकदीर खुद लिखो, लेकिन मजीद इसको कंफर्म करने के लिए ये तीनों चीजों को हमें इस्तेमाल करके अपनी तकदीर बदलना है, ताकि आज की रात थोड़ा जाग के भी गुजारे, दुआओं की जहमत भी हो, नमाजों में घुटने भी टूटे, बाकी साल के 353 दिन, इस्लामी साल में 354 डेज होते हैं, बाकी साल के 353 डेज आराम से सोइए। लेकिन अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम یہ تمہید ہے، اصل موضوع ابھی اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، اس کا اختتام ایک حدیث پہ کر دوں، بہار الانوار والیوم 98 جو یہ بتا رہا ہے کہ شب قدر ہر نبی کی امت میں رہی، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے ہر نبی کی امت میں رہے، شب قدر بھی ہر نبی کی امت میں رہی. حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ جا کے کہا خداوندہ میں تیری قربت چاہتا ہوں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بڑے آدمی سے اس کے تعلقات ہوں، دنیا کو پتا چلے کہ وہ بڑے آدمی کے بہت قریب ہے. اس کورونا ڈیزیز نے ایک اور پرابلم سے مجھے نجات دلا دی، میں بہت زیادہ اس سے الرجک تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے میرے جھگڑے ہوئے اس بات پر. سیلفی، وہ جو ایک سیلفی کا جنون ہے نا، نہ کسی سے اجازت کی جاتی ہے، نہ کوئی اخلاقیات کا خیال کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ راستہ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور مالو کھٹ سے وہ آ کے کھڑا ہوا سیلفی. اور حج میں لوگ، زیارت میں لوگ، دنیا بھر کے لوگ ٹکراتے ہیں نا ہم سے، پتہ بھی نہیں چلا ہم کو، کھٹ سے معلوم ہوا سیلفی لے لی، ہم تو ڈیلیٹ کرا دیتے ہیں جب نگاہ ہو جائے، کہتے ہیں مولانا تو بڑے بد اخلاق ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بد اخلاقی صحیح، اس کو ٹرین کرنا. یہ سیلفی ایک مصیبت ہے. فی الحال کورونا ڈیزیز کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ میں یہ سیلفی کی مصیبت تو ختم ہو گئی ہے نا، لیکن سیلفی کے پیچھے جذبہ تو یہی ہوتا ہے نا، جی ہم کھلا کے بہت کلوز، یہ دیکھیے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہماری سیلفی، یہ دیکھیے پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری سیلفی، یہ دیکھیے مرجع کرام، وہ تو کہیے مراجع اتنی احتیاط کرتے ہیں، لیکن فلا عالم کے ساتھ یہ ہماری سیلفی، یہ دیکھیے جو بھی جس کی نگاہ میں بہت بڑا آدمی، وہ فلا فلم ایکٹریس کے ساتھ ہماری سیلفی، یہ فلا فلم اسٹار کے ساتھ ہماری سیلفی، یہ فلا کرکٹر کے ساتھ ہماری سیلفی. حضرت موسیٰ سوال کر رہے ہیں خداوندہ میں تیرے ساتھ نعوذ باللہ سیلفی لینا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ یعنی میں تیری قربت چاہتا ہوں. کرکٹر کی قربت نہیں، گلوکار کے نہیں، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے ایکٹریس کی قربت نہیں، کسی پولیٹیکل فگر کی قربت نہیں، چلے کسی ریلیجس کی قربت نہیں، تیری قربت چاہتا ہوں. کہا شب قدر جاگ کے گزار دو، اس رات کو جاگو گے میرے قریب ہو جاؤ. خدا تو ہمیشہ ہی جاگتا رہتا ہے، لا تاخذ حسنۃ ولا نوم، آج کی یہ رات. کہا پروردگاروں میں یہ چاہتا ہوں پولیس سراج سے آرام سے گزر جاؤں، وہ بہت ڈر لگتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز آگ سے زیادہ گرم قدم پھسلے کے پھسلے کے پھسلے کے گرا. کہا کہ شب قدر میں صدقہ دے دو، یہ صدقہ پولیس سراج میں تمہارے پیروں کو جمع کے رکھے گا، جمع کے. میں بہت تشریح کر سکتا ہوں ان حدیثوں کی، لیکن آج کی رات اعمال کی رات. کہا کہ اے خدا، اور میں یہ چاہتا ہوں جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤں. یہ ایک لفظ کی بھی بڑی وضاحت ہے کہ جنت میں داخل ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن آرام سے داخل ہو جاؤں. کہا تو اس کے لیے اس شب قدر میں میری جتنی تسبیح کر سکتے ہو تسبیح کرو. تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، ہمارا رب ہر عیب اور خرابی سے پاک، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے سبحان اللہ. جتنی میری تسبیح کر سکتے ہو، دعائے جوشن کبیر اللہ کی تسبیح سبحانک لا الہ الا انت، یہی تسبیح سبحانک. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤں. کہا کہ شب قدر میں میری تسبیح کرو. تو جو جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں وہ تو خیر خود بخود اس پہ عمل ہو رہا، کوئی اگر نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ لمبی دعا ہے تو 100 ٹائم سبحان اللہ. کہا کہ اور خدا بندہ یہ میں چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لوں. جنت میں داخل ہونا ایک چیز ہے، لیکن جہنم سے ہو کے جنت میں نہ جانا پڑ. سورہ مریم کی آیت، ان کان واردھا الا حتما مقضیہ، جنت میں جانے کا ایک راستہ جہنم میں سے ہے، جس میں سے ہر ایک کو جانا ہوگا. سورہ مریم. کہا کہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہنم کے اندر داخل ہوئے بغیر جنت میں جاؤں. کہا کہ استغفار کرو. چنانچہ ہم جو نماز پڑھیں گے اس کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اگر موقع ملے تو بعد میں دعائے توبہ یا مناجات امیر المومنین پڑھ لیجئے توبہ، لیکن دل کی گہرائی سے ہو استغفار، یعنی واقعا دل کہہ رہا ہو کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرنا. اور خدا بندہ یہ پانچویں چیز موسیٰ نے مانگی، کہ خداوندہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، تیری رضا اور خوشنودی مجھے مل جائے. شب ہجرت مولا نے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا خریدی. موسیٰ نے کہا میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں. بات شروع ہوئی تھی قربت سے، پھر جنت، پل صراط، جہنم، پھر آخر میں رضا. کہا شب قدر میں دو رکعت وہ نماز پڑھو جو ابھی ہم اور آپ اعمال کے شروع میں پڑھیں گے. ہم تو اعمال ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دو رکعت نماز کا فائدہ کیا بتایا؟ کب؟ آج نہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اس وقت سے یہ چیزیں چلی آ رہی. ہم دعائے دوشان کبیر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن معلوم ہے اس کا اصل فائدہ کیا بتایا؟ ہم استغفار کرتے ہیں 70 times استغفر اللہ، لیکن آخر اس کا فائدہ کیا؟ ہم اللہ کی قربت. تو بہرحال یہ شب قدر کی اہمیت بھی اور کچھ اعمال کے حوالے سے بات بھی. اب میں اپنی بات کو اختتامی مرحلے کی جانب لا رہا ہوں، ابھی ذرا ٹائم لگے گا اختتام ہوتے ہوتے. اب یہ ساری، یہ جو رات کی ساری برکتیں ہیں نا، یہ اتنے فائدے، اتنی برکتیں، یہ ہمیں میکسیمم کس طرح سے مل سکتی؟ زیادہ سے زیادہ اس کے فائدے ہم کو حاصل ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعمال. لیکن اس سے پہلے کہ اعمال کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں، رک کے یہ بھی میں بتا دوں کہ دونوں آیتیں جو شب قدر کے لیے قرآن میں آئیں، ایک سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک سورہ دخان حامیم دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. دونوں میں خدا نے کہا ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا. کیا مطلب اس سے؟ قرآن پہلی وحی اس دنیا میں غار حرا میں آئی ہے 27th of Rajab کو. 27th of Rajab جو اس سال کورونا ڈیزیز سے پہلے کی وہ رات تھی کہ جب 10 آدمیوں کی گیدرنگ الاؤڈ تھی. ہم لوگوں نے یہاں پہ وہ گیدرنگ بھی کی، اعمال بھی کی، اور اسی رات کو اناؤنس ہو گیا کہ اب ٹوٹل لاک ڈاؤن، جو اب پھر ختم ہو گیا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن تو 27 Rajab کو نازل ہونا شروع ہوا ہے، لیکن سورہ قدر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، سورہ دخان بھی کہہ رہا ہے ہم نے اسے اس برکت والی رات میں نازل کیا. چنانچہ برادران اہل سنت کے ہاں شب نزول قرآن آج رات کو کہا جاتا ہے. آج تو نہیں، ان کے ہاں شب قدر زیادہ معتبر ہے، 27th Ramadan، لیکن شب قدر. قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے. ایک، اللہ نے جب قرآن کو کریٹ کیا اور خلق کیا تو پورا لوح محفوظ میں اتارا، جیسے آج کل آپ کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پوری فائل. اور پھر اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ دنیا میں آنا شروع ہوا. تو قرآن دو طریقے سے بھیجا گیا ہے یا ڈاؤن لوڈ کیا گیا. ایک، اللہ نے پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ، جس میں فیوچر کی ساری باتیں، پیغمبر کے زمانے میں شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا، طلاق کا مجادلہ، آیت آئی، ابھی یہ دنیا بنی بھی نہیں ہے، آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، سورہ مجادلہ شوہر بیوی کے جھگڑے کی آیت وہاں چکی. پورا قرآن ایک ساتھ، میں نے کہا نا پوری فائل جیسے ڈاؤن لوڈ ہوتی، لوح محفوظ پہ نازل کیا، وہ آج کی رات تھی. اور اس کے بعد پھر اس کا ایک ایک ٹکڑا دنیا میں پیغمبر کے تھرو آتا رہا، وہ ہے 27 Rajab کو اسٹارٹ ہوا. 27th Rajab ڈیٹ کیا تھی؟ 27. جگہ کیا تھی؟ غار حرا مکہ میں. اور کمپلیٹ ہوا 18th of Zilhij کو میدان غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے ذریعے سے. اب وہ ٹکڑا ٹکڑا اس لوح محفوظ میں سے قرآن آتا رہا، وہ 27th Rajab دنیا میں آنا شروع ہوا، 18th Zilhij غدیر خم میں مکمل ہوا. مگر یہ جو قرآن تذکرہ کر رہا ہے، جب اللہ نے پورا قرآن ایک ساتھ بنا کے ایک ساتھ لوح محفوظ پہ اتار دیا، وہ آج کی رات. تو آج کی رات قرآن کی سالگرہ، قرآن کی برکتوں والی رات. چنانچہ آج کے اعمال میں قرآن کے کچھ سورے بھی پڑھنے کا خاص حکم ہے. اب آئیے یہاں پہ ہم ایک آخری بات اور عرض کر دیں، یہی آج رات کی پریپریشن کے حوالے سے، پھر اعمال کا آغاز کریں، اعمال کی وہ باتیں جو تقریر میں آئیں گی، اور پھر ایک چھوٹا سا بریک دینے کے بعد باقاعدہ جو زبان سے ادا کرنے والی دعائیں ہیں وہ اعمال. ایک آخری بات، تقدیر بدلنے میں میں نے 3 باتیں بتائیں، صدقہ، مومنوں کے ساتھ نیکی، और दुआ। मगर जो सबसे अहम बात, वो दुआ ही का एक हिस्सा है लेकिन उसकी अहमियत की वजह से उसको अलग समझ। यूनुस, हजरत यूनुस की कौम नहीं, वो जो यूनुस आदमी था जो अंगूठी के नगीनों पे नक्शो निगार बनाता था इंग्रेविंग, आपको अपना नाम लिखवाना है, किसी को कुरान की आयत लिखवाना है। और अब्बासी खलीफा ने एक बार उसको बुला के एक बड़ा सा नगीना दिया और कहा कि इस नगीने पे ये इबारत लिख दो, देखो बहुत कीमती है, इतना बड़ा कहां मिलता है नगीना, जैसे हमारी अकीक होता है, फिरोजा होता है, दुर्र नजफ होता है, अजीज चीनी है, वो बहुत ही कीमती, ले जाओ और बहुत एहतियात से काम करना। वो ले गया, घर आए, बच्चे ने देखा, जिद की, हाथ में लिया, बच्चे के हाथ से गिरा, दो टुकड़े हो गए नगीना। नगीना दो टुकड़े क्या हुआ, इसकी तो जिंदगी खत्म। अब्बासी खलीफा, वो जमहूरी हुक्मरान तो है नहीं, खलीफा यानी डिक्टेटर, इसको मारेगा, इसके पूरे घराने को उड़ा देगा। घबरा के इमाम के पास गया, दसवें इमाम का जमाना है, फरजंद रसूल, मेरी तो यकीनी मौत। इमाम ने कहा घबराओ नहीं, जब वो खलीफा तुम्हें वापिस बुलाए, बुलाएगा ना कि वो काम हुआ कि नहीं, घर से निकलते वक्त हमारा नाम ले लेना, देख लेना क्या होता। दिल में ख्याल आया, ख्याल क्या आया, शैतान ने वसवसा पैदा किया, बोले तो टूट गया है नगीना, अब इमाम का नाम लेने से वो जुड़ तो नहीं जाएगा, वसवसे तो आते हैं ना, यानी इसके दिल में कोई बदगुमानी नहीं आई। लेकिन शैतान तो बाज़ औक़ात ऐसी बातें अल्लाह के खिलाफ वसवसा दिल में डाल देता, जो माफ है, मिन शर्र अल-वसवासिल खन्नास, माफ है। लेकिन अभी तो फिलहाल तो यह है कि जब तक नहीं बुला रहा हाकिम, जरा सा सुकून है। एक दिन हाकिम का गुलाम आया, सुबह सुबह हाकिम ने बुलाया, अच्छा कहा पता है क्यों बुलाया, शायद किसी और काम से, कहा नहीं वो नगीने के बारे में बात करना, ओहो जान तो निकल गई। लेकिन क्या करें, इमाम ने कहा था सहन में खड़े होकर उसने इमाम का नाम लिया, दसवें इमाम का, उनका वाकया, और पहुंचा महल। हाकिम ने कहा कि वो जो काम मैंने तुझे दिया था, तूने वो नाम लिखे कि नहीं लिखे अभी, अभी इससे पहले कि कुछ सोच रहा है, कहा नहीं लिखे तो ठहर गया। तुझे पता है मेरी दो बीवियां हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों को नगीना चाहिए, तो एक काम पहले यह करके उसके दो टुकड़े कर दे, आधा आधा, और उसके बाद ताकि मैं एक हिस्सा एक बीवी को दूं, दूसरे हिस्सा दूसरी बीवी को दूं, और ये मेरा ये मसला खत्म हो जाए। अरे भाई, इसके घर में वो नगीना दो टुकड़े होकर पड़ा हुआ है, समझ रहा है मेरी जिंदगी गई, और अब्बासी खलीफा कह रहा है कि उसके दो टुकड़े कर देना ताकि दोनों बीवियां खुश हो जाए। वाह, नाम इमाम की बरकत के जिसको मैं यकीनी समझ रहा था मौत, इस तरह से मुझे न सिर्फ यह कि जिंदगी मिली, बल्कि जब वो नाम लिख के गया तो अब इसको डबल उजरत मिली। कहां तो जिंदगी खतरे में थी, कहां उसको डबल उजरत मिली है, क्योंकि डबल काम इसने किया। तो ये अमल है कुरान जो हमारे यहां, उसमें हम क्या करते हैं। अब इसके लिए लोग दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं ना कि इमाम के नाम से दुआ कबूल, वो इतनी लंबी चौड़ी दुआए तवस्सुल की जरूरत नहीं है। ये अमल है कुरान, बे मोहम्मद बे अली इन बे फातिमता बिल हसन बिल हुसैन, यही हम मासूमीन के नाम लेते हैं, जो हमारे आमाल की कबूलियत के साथ साथ तकदीर बदलने में सबसे अहम चीज है। तो अहमियत समझ के अमल कीजिएगा कि हमारे पास यूनुस नक्काश का वाकया है, इमाम ने कहा सिर्फ हमारा नाम लेना, उसके लिए दुआए तवस्सुल की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां यह रवाज एक हद तक है, जब भी किसी मुश्किलात में पड़ते हैं हम लोग, जो हमारे बुजुर्ग जो जिनको हम बिल्कुल जाहिल औरतें समझते हैं, वो भी पूरी दुआए तवस्सुल नहीं पढ़ती, या अली मदद, खाली या अली कहती, इमाम फरमाते खाली हमारा नाम। तो ये सब ये अमल, ये सारी चीजें तो मैंने उन अमाल की बताई जो हम लोग अभी करेंगे। उससे पहले एक लिस्ट सुन लीजिए, वो अमाल जो इज्तिमाई तौर पर नहीं होंगे। तो अब वो क्या आमाल है जिसके जरिए तकदीर बदली जाएगी, हमारे सारे मसले हल होंगे, फरिश्ते ये फाइल तैयार कर रहे हैं, अभी हमारी फाइल तैयार कर रहे हैं हमारी जबानी सुन सुन के, और वो इमाम के पास सुबह सवेरे लेके आएंगे। तो ये आमाल के दो हिस्से होंगे, एक इज्तिमाई जो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, और एक ऐसे जो आदमी को खुद करना है, तो वो जल्दी से सुन लीजिए। नंबर एक, रात को जागना, ये खुद अपनी जगह एक अमल है, खाली रात जागना। हां उसमें कोई इबादत ना भी करे, खाली जागे तब भी है, हां कोई गलत काम भी ना करे, आईफोन पे लगे, आईपैड पे लगे हुए, फिल्में देख रहे हैं, वो सब नहीं, खाली रात जागना, चाहे कोई और इबादत ना करे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान की जरूरियात है। रोजा किस चीज का नाम है? खाना पीना आपकी जरूरत है, आपने खुदा पे कुर्बान कर दी, चाहे रोजे में और कोई काम ना करे। नींद इंसान की जरूरत है, आज रात अपने नींद आपने कुर्बान कर दी अल्लाह के लिए, चाहे और कोई काम ना करे, खुद एक इबादत है। नंबर एक। नंबर दो, गुस्ल, जो रात के शुरू में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे पूरी रात पड़ी है, किसी वक्त भी यह गुस्ल शब कदर हो सकता है। हर साल तीन तीन बार आप ये बातें सुनते हैं तो तफसील में जाने की जरूरत नहीं। नंबर तीन, सदका देना। सदका जो है वो इबादत है कि रात के शुरू में देते पूरी रात की मुसीबतें खत्म। आज रात को देंगे तो आज रात की सारी मुसीबतें खत्म, और आज रात की मुसीबतें खत्म तो सारा साल की मुसीबतें खत्म, क्योंकि आज तो वही सारे प्रॉब्लम आपके लिखे जा रहे हैं जो साल में पेश आने वाले, आज वो सारे प्रॉब्लम ही अगर खत्म कर दिया अल्लाह ने, तो ये एक सदका पूरे साल के प्रॉब्लम के लिए न सिर्फ ये के काफी होता, बल्कि कुरान ने ये कहकर के आज की रात हजार महीनों से बेहतर है, आज की हर इबादत को हजार महीनों से बेहतर करार दिया। तो हजार महीनों में सदका दें उससे बेहतर आज की रात का सदका। और इस सदके में फिर मैं ये एक बात याद दिला दूं कि अलसर सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी वो जो एक गरीबों के लिए राशन पहुंचाने की एक स्कीम तैयार की है, पिछले साल भी इस पर अमल हुआ था, इस साल भी है, $40 पूरे महीने का राशन है, कुछ $20 अगर आप कुछ आइटम उसमें कम करना चाहिए, इसका एक पार्ट है, और आज की रात तो बेहतरीन रात है। अच्छा, ये तीन बातें तो हो गई, इसके बाद जो अमाल होंगे उसके अलावा भी मैंने कहा कि आज की रात इमाम को बहुत ज्यादा याद करना, क्योंकि आज की रात तो हमारे सारे मामलात हमारे पास नहीं आएंगे, इमाम के पास जाएंगे, वो सलामत रहें, वो खैरियत से रहें, हमारी तवज्जो उनकी जानिब रहे, तो फिर हमारा बेड़ा पार है। तो अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीका की दुआ के जरिए भी, इसके अलावा भी रात के आखिर में अगर इमाम के हवाले से आपको और कोई दुआ नुतबा ज़ियारत आल यासीन वगैरह का मौका मिले, किताबों में नहीं लिखा। आखिरी दो बातें बता के फिर मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल करूं। आज की रात का एक और बहुत अहम अमल है, मैं हर साल उसको किताब खोल के बयान करता हूं, वो किताब तो मेरे सामने रखी है, लेकिन फिलहाल अभी किताब बहुत दूर है, जब अमाल शुरू होंगे तो फिर याद दिलाऊंगा। आज की रात वाजिबात और हराम के चंद मसाइल पर गौर करना। अब चाहे आज की दुनिया माने के ना माने, दुनिया से मतलब ये आम काफिर नहीं, अपने मोमिन, इस्लाम में इल्म और आलिम का एहतराम, अगर आप दो रकत नमाज 10 मसलों के साथ पढ़ें तो सवाब कुछ और है, और 15 मसले आपको याद हो दो रकत नमाज पढ़ें तो सवाब खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब ये बिल्कुल एक अलग मौजू है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। चुनाचे हमारे मसलन इस वक्त के बहुत ही मशहूर उलमा में से एक, मर्जे में से एक, आयतुल्लाह नासिर मकारी में शीराजी, वो शब कदर के अमाल में लिख रहे हैं कि हो सके तो रात के कुछ हिस्से में कुरान की कोई तफसीर, हदीस की कोई किताब, कोई दीने किताब, वो भी उसका भी थोड़ी देर सही मुतालिया करें, वो अमल का हिस्सा बनाया है उन्होंने। और वो उन्होंने कहां ये नोट लिखा है, वही जो मफातिर जिनाह में शेख अब्बास कुम्मी ने शेख सदूक के हवाले से कहा कि आज की रात इल्मी मसाइल। तो चले दो छोटी छोटी बातें बयान कर दूं, मसाइल भी हो जाएंगे और साथ में आज की रात का अमल भी हो जाएगा। देखिए, रात वैसे ही पूरी इबादत की, और इस साल तो वीकेंड की रात है, तो अब टाइमिंग के बारे में हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, 5-7-10 मिनट किसी अमल में ज्यादा हो गए, आधा घंटा थोड़ा हम ताखीर हो गई, तो आज की रात में इतना ज्यादा हमें पंक्चुअल नहीं होना है जितना उन रातों में कि जहां हर आदमी का अगले दिन जॉब पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है या कोई और मसरूफियत होती है। दो छोटी बातें सुन लीजिए। नंबर एक, आज की रात के अमाल में 100 रकत नमाज भी है दो दो करके, लेकिन एक मसला शरई है कि अगर किसी पर कजा नमाजें बाकी हो तो उसके लिए बेटर है कि पहले कजा खत्म करें, उसके बाद फिर सुन्नत नमाजों की तरफ आए। ये वही चीज है जो शहादत की मजलिस में एक रिवायत मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात को 6 लाख दीनार के बदले में 6 कलमे दिए, और उनमें से एक ये था जब लोग मुस्तहबात की तरफ जाएं तो तुम वाजिबात की तरफ आना। कजा नमाज पढ़ना वाजिब, आज ना पढ़े कल पढ़े परसों पढ़े, मरने से पहले पहले पढ़ना वाजिब है। वो तलवार सर पे लटक रही है, आज रात की 100 रकत नमाज वाजिब नहीं। तो जिनके ऊपर कोई कजा नमाज नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है उनमें बहुत से ऐसे बच्चे, लेकिन जिन पर कोई कजा नमाज है तो पहले कजा नमाज पढ़े। इसलिए दुनिया भर में आज की रात के आमाल में 100 रकत से मैच करती हुई 6 दिन की कजा नमाज बनती है 102 रकत, तो यह नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, लॉकडाउन पूरा खत्म भी नहीं हुआ विक्टोरिया में, तो यहां तो ये आमाल नहीं हो सकेंगे, फिर बाद में जब ये आमाल यहां के मुकम्मल होंगे रात तो फिर भी बाकी होगी। ऑस्ट्रेलिया में आजकल सर्दियां चल रही हैं तो रात बड़ी है तो वक्त ज्यादा बच जाता है, आखिर में अपने घर में कजाए उमरी पढ़ लीजिए, 6 दिन न सही तो 4 दिन, 4 दिन न सही तो 2 दिन। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि कराची की हद तक तो मैंने देखा है, बल्कि पाकिस्तान के बहुत से लोगों के जहन में यह मिसअंडरस्टैंडिंग कि आज की रात 6 रकत नमाज पढ़ लोगे तो जिंदगी भर की कजा नमाजें माफ हो गई। कुछ लोगों को बहरहाल थोड़ी एहतियात होती है कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा है, टू मच हो गया, बस मजलिस पढ़ने वालों के मजलिस सुने ना तो कुछ ऐसी ऐसी रिवायतें पढ़ते हैं कि आप भी कहते हैं तो जरा कुछ ज्यादा ही हो गया, तो वो कहते हैं कि नहीं पूरी जिंदगी नहीं लेकिन कम अज कम इस पूरे साल की नमाजें माफ हो जाती हैं। टोटल गलत मसला, 6 दिन की नमाज पढ़ेंगे तो 6 दिन की नमाजें आपकी माफ हैं, 7 दिन की भी माफ नहीं। फर्ज कीजिए जिंदगी में आपके आपके ऊपर 50 दिन की नमाजें कजा हो गई मिल मिला के, और ये आपने शब कदर में पढ़ा तो सिर्फ 6 दिन की माफ होंगी, बाकी नमाजें एज इट इज रहेंगी। ये तो 6 दिन इसलिए हम पढ़ते हैं कि वैसे असल में 100 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म था, लेकिन वो सुन्नत नमाज थी तो हमने कहा पहले कजा का बोझ उतार दो तो 100 भी हो जाएगी और कजा का भी मसला खत्म हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक मसला और है, ये है जिहालत के साथ अम्र बिल मारूफ, मालूमात कुछ नहीं और नेकी का शौक सूझा है तो बस नेकी करने निकल खड़े हुए। कराची में जुमे के दिन, कौन सा जुमा, रमजान का आखिरी जुमा जो अलविदा का जुमा होता, और बहुत से लोग ऐसे मोमिनीन जो कहते हैं सारा साल हम सिर्फ एक नमाज पढ़ते हैं वो अलविदा की नमाज, बस ना उसे पहले कोई नमाज पढ़ी ना उसके बाद कोई नमाज पढ़ी, तो अलविदा की जुमतुल वदा की नमाज में पहले पंफलेट तकसीम होते थे। एक हदीस लिखी होती थी कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई आज के दिन ये 4 रकत नमाज पढ़ ले तो उसकी जिंदगी भर की कजा नमाजें, उसका गुनाह माफ हो जाता है, चाहे वो रेत के जर्रों के बराबर हो चाहे वो समंदर के पानी के कतरों के बराबर। अब ये पंफलेट तकसीम इसलिए नहीं होता है कि अब तो ये आईफोन और व्हाट्सएप के वह मैसेज आ जाते हैं, लेकिन इसलिए लाते हैं ये मैसेज, फेसबुक के ऊपर लोग ये मैसेज पोस्ट करते हैं, अमर बिल मारो भाई एक बहुत अच्छी हमको रिवायत मिली है लोगों को बता दे उनकी जिंदगी भर की नमाजें माफ हो रही। गलत, शबे कदर में आप 6 दिन की नमाज पढ़ेंगे एटलीस्ट आपकी 6 दिन की कजा तो माफ हो जाएगी एटलीस्ट, वो जुमतुल विदा की जो 4 रकत नमाज पढ़ेंगे उसमें तो एक वक्त की नमाज भी माफ नहीं होगी क्योंकि वो तो आप सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, तो शबे कदर में फिर भी आप कजा उमरी पढ़ते हैं, फज्र की कजा, जोर की कजा, असर की कजा, मगरिब की, वहां तो सुन्नत नमाज है, एक भी माफ नहीं हुई। लेकिन फिर भी वो हदीस, अगर के ज़ईफ हदीस, लेकिन ज़ईफ हदीस का भी मतलब कुछ और, भाई देखिए जब हम नमाज कजा करते हैं, आज हमने फज्र की नमाज कजा कर दी, अब हम पर 2 जिम्मेदारियां आ गई, एक ये कि नमाज पढ़ो और दूसरा यह कि अपने गुनाह की माफी मांगो। आपने फजर की कजा की आज सुबह और फिर आके नमाज पढ़ ली लेकिन अल्लाह से तौबा नहीं की कि मैंने गलत काम किया था, आपका गुनाह बाकी है, قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا و تابوا و اصلحوا, جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کے بعد اصلاح کی, ریکٹیفائی کیا اپنی غلطی کو. تو اب آپ نے قضاء عمری پڑھی 6 دن کی لیکن توبہ نہیں کی, گناہ باقی. وہ جو مت الوداع کی نماز قضاء عمری کی تعداد کو کم نہیں کرتی ہے لیکن قضاء عمری کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے. تو دو چیزیں آپ کو کرنا ہے, ایک تو توبہ کرنا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی کیوں, آئندہ نہیں ہوگی, اور دوسرا یہ کہ پھر نماز پڑھ کے دیکھاؤ. تو یہ دو غلط فہمیاں رمضان کے آخری ہفتے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک شب قدر کی 6 دن کی نماز تو زندگی بھر کی نمازیں معاف, اور ایک جمعۃ الوداع کی نماز, یہ لاسٹ ویک کی دو غلطیاں. ایک مسئلہ شرعی بھی اس کے حوالے سے میں نے بتا دیا, اور اب بالکل ہم آخری مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں. جو چیز مجھے اس کو بعد اس کے بعد بتانا تھی, فی الحال اس کا وقت بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے. ایک آدھ چیز اعمال کے درمیان کہیں کہیں میں مختصر سی کچھ چھوٹی موٹی اسپیچ کر دیتا ہوں, شاید اس میں آ جائے. لیکن اصل میں فطرے کے ایک دو مسئلے دوبارہ ریپیٹ کرنا تھے. مجھے یاد ہے میں نے لاسٹ ویک پورے مسئلے بتائے تھے کہ رمضان میں ایڈوانس میں فطرہ دیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی, اور یہ ہے کہ کس چیز میں فطرہ نکالا جائے گا, اس کی تھوڑی وضاحت تھی لیکن کسی اور موقع پر. اس وقت جو بات کہنا تھی وہ شہادت کی مجلسوں میں جو ایک چیز آئی تھی اس کو پھر مجھے ہائی لائٹ کرنا. دین کو سمجھنا ہے شریعت کو, تو احتیاط واجب کے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھے, بڑے اس کے بینیفٹ ہیں, بڑی سہولتیں آپ کو اس میں مل جائیں گی, اور اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اب یہ فرنج کٹ داڑھی کے مسئلے میں میں نے کہا تھا کہ احتیاط واجب کے مسئلے سے ہی ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو اس وقت جانور دنیا بھر میں اسٹیل کی چھری سے ذبح ہو رہے ہیں, احتیاط واجب کی وجہ سے ہم وہ گوشت کھاتے ہیں. حج والے کو تو پتا, حج میں تو احتیاط واجب اتنی جگہ کام آتا ہے, بار بار بتانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو, تو عام آدمی کو بھی یاد ہو جاتا ہے, عام زندگی میں بھی یہ بہت کام آتا ہے. اب یہ فطرے میں بھی 2-3 مسئلے احتیاط واجب ہیں. مثلاً آغا سیستانی کے احتیاط واجب ہے کہ فطرہ غریب کو دیا جائے, مسجد اور امام باڑے میں خرچ نہ ہو. لیکن بعد کے سارے مراجع کہتے ہیں مسجد امام باڑے کے مینٹیننس میں بھی خرچ ہو سکتا ہے, فی الحال ضرورت نہیں ہے اس کو آسٹریلیا میں ہائی لائٹ کرنے کی, لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں. تو اس کو اچھی طرح سمجھیے گا, آج وقت نہیں ہے میرے پاس. تو یہ 3-4 چیزیں تو ممبر پہ بیان کرنا تھی. آخری بات اور عرض کر دوں اور پھر میں اپنی گفتگو اختتام کو پہنچاؤں, اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات اگر کبھی ایک آدمی کے پاس ایک ایسا کیا انگریزی میں کیا کہیں گے, ڈائلمیا یا مخمسا, آدمی دو چیزوں میں اس طرح پھنس جائے کہ یا یہ لے یا وہ لے, یہ بہت ہوتا ہے. ایک آدمی ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ ظالم نے گردن پہ چھری رکھ دی ہے کہ پوری رات اعمال کرو, سارے اعمال ساری دعائیں, کوئی چیز نہ چھوٹنے پائے, لیکن فجر کے وقت سو جانا, یا یہ کہ فاری میں تمہیں فجر کی پرمیشن دوں گا پھر پوری رات کسی عمل کی اجازت نہیں دوں گا. شرن کس میں زیادہ ثواب ہے, کس میں زیادہ فضیلت ہے, پوری رات سو جاؤ, ایک عمل نہ کرو, فجر کی نماز پڑھو, وہ واجب ہے, وہ ایک واجب ہے, باقی پوری رات سب چیزیں سنت ہے, قربان کی جا سکتی. تو یہ تو میں نے ایک لفظ سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ بہتر ہے, لیکن اصل تو ہے کہ وہ لازم ہے, چھوڑ دو اعمال شب. اگر کوئی آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ پوری رات اعمال کرے گا تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, وہ نہ کرے اعمال, وہ جائے سو جائے, بالکل اسے شرن اجازت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو ساری رات اعمال کر کے فجر کی نماز قضا کر ڈالے. اب آج کل ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ایک زمانے میں رہ چکے ہیں. تو یہ بات میں نے اتنا ہائی لائٹ کر کے کیوں بتائی, فجر کے حوالے سے نہیں, فجر تو ہر ایک پڑھتا ہے. آج کی رات کے اعمال میں بعض علماء نماز جعفر طیار کو بھی بہت زور دیتے کہ یہ ضرور پڑھیے گا, بے شک وہ بھی ایک حاجتوں کے قبول ہونے کی نماز ہے, اور آج کی رات تو حاجتیں قبول کرنا. لیکن یہ سن لیجئے مسئلہ شرعی, نماز جعفر طیار سے زیادہ اہم اور بہت زیادہ اہم نماز شب ہے, اور خالی آج نہیں, زندگی میں ہر جگہ, کئی جگہ ایسے امام کے روزے, مثلاً 8ویں امام کا روزہ ہے, مسجد النبوی, نماز جعفر طیار کا ثواب بہت زیادہ. लेकिन अगर ये च्वाइस हो कि या तो हम वो नमाज पढ़ें या नमाज शब, दोनों नहीं पढ़ सकते, छोड़ दीजिए नमाज जाफर तैयार, नमाज शब की अहमियत ज्यादा और उसके बेनिफिट भी ज्यादा। जो कुछ नमाज जाफर तैयार से आपको मिलने वाला है वो सब नमाज शब से भी मिलेगा। और फिर नमाज शब में एक बेनिफिट है कि आप अपने 40 मरहूम मोमिनीन और मोमिनात को भी सवाब दिलवाएंगे, लेकिन इसकी वजह से नहीं। तो आज की रात के अमाल में शायद ही किसी किताब में लिखा हो कि नमाज शब पढ़ो, लेकिन इख्तिताम पे वो पढ़िएगा। और नमाज जाफर तैयार भी उससे पहले पढ़ ले तो क्या कहना, लेकिन अगर दोनों इतनी नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं है तो फिर नमाज शब को अहमियत देना। अब ये सारी चीजें होती है अगर आपने दीन को सही तरीके से सीखा, चलते फिरते साल में एक मरतबा कोई दो मसले सुन लिए और खत्म बात, बेतरतीबी के साथ जो दीन सीखा जाता है ना उसमें ये खराबियां हैं कि एक वक्त में आदमी क्या क्या बताए लोगों को। चुनांचे मैं कई दफा कह चुका हूं कि जितने हमारे इमामबाड़े और सेंटर्स हैं उन सब में रेगुलर बेस पर पूरा साल मसाइल दीन के सिस्टमेटिक वे से, जैसे स्कूल और कॉलेज के कोर्स में चीज सिस्टमेटिक पढ़ाई जाती उस तरह के सेशन होना चाहिए। लेकिन अब यह बात बहुत लंबी हो गई और मैं अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैंने 10 मिनट लेट शुरू किया है तो ये प्रोग्राम 10 मिनट और 15 मिनट लेट चलेगा। बस ये आखिरी जुमले कि ये सारे अमाल और सारी चीजें हैं और आप दुआएं अल्लाह से मांगेंगे और मांगे ही मांगेंगे आज की रात से बेहतर रात क्या। लेकिन बहरहाल हमारी और आपकी दुआएं, जितना हमारा मेंटल लेवल है और जितनी हमारी कमजोरी है उसके एतबार से होती है, या सेहत की दुआ होती है, रोजी की दुआ होती है, इमिग्रेशन की दुआ होती है, डिग्री मिल जाने की दुआ होती है। सवाल यह है कि कभी हम यह भी गौर करें ना कि अइम्मा ताहिरीन जो सारी कायनात से बेनियाज हैं सिवाय अल्लाह के, जो खुद हर चीज पे हुक्म खुदा से इख्तियार रखते हैं, वो भी तो दुआएं मांगते थे। जो कुछ दुआओं में क्या मांगते थे, क्या सेहत उनके लिए कोई मसला है, क्या रोजी रिस्क मसला है? तो हमारे सामने तो दो तीन चीजें आती हैं। मैं मसायब पढ़ना भी नहीं चाहता और थोड़ा सा मसायब का टच भी देना चाहता हूं। जो सारी कायनात को अता करने वाला हल्लाल मुश्किलात मुश्किल कुशाए कायनात है अली, वो भी दुआ मांगता है, अलबत्त वो दुआ के अंदर अब्बास को मांग रहा। अली की दुआ ये है कि मुझे अपना एक ऐसा वारिस बेटा चाहिए जो मैदान करबला में दीन के काम आए। अली ने भी दुआ मांगी और अली ने भी बारगाह इलाही में अपने आप को मोहताज जाहिर किया। लेकिन अली की एहतियाज जो जरूरत है अब्बास, जो सारी कायनात का बाबुल हवाइज बना अब्बास, हुसैन जिसके कुब्बे के नीचे दुआ मांगो तो हर एक की दुआ कबूल है, जिसके गहवारे से मस करके फुतरुस दुआ मांगे तो उसका सारा तर्क औला और उसकी सारी खताएं माफ है, वो हुसैन। क्या उन्होंने भी कभी दुआ मांगी? हुसैन ने दुआ मांगी सकीना की शक्ल, हुसैन की दुआ है सकीना। और ये जो शुरू में एक हदीस आई थी इससे मिलती जुलती है लेकिन जरा मुख्तलिफ, या रसूल अल्लाह आज की अहम तरीन दुआ क्या है? का आफियत। हुसैन की दुआ क्या थी? सकीना। सकीना अरबी में किसको कहते हैं? ट्रैंक्विलिटी, सुकून। हमारी और आपकी ट्रैंक्विलिटी क्या चीजें होती है, मैं उसमें से बात का नाम भी अब नहीं लेना चाहता जिस मंजिल पर तकरीर पहुंची। हुसैन का सुकून है सकीना, और खुद सकीना बाबा के लिए सुकून ला रही है। उसने भी कभी दुआ मांगी? जीबाजार कूफा में मांगी उम्मे हबीबा के लिए, खुदा बंदा जैसी यतीमी सकीना पर आई है इस मोमिना पे ना आने पर, इसके बच्चों पे ना आने पर, और जैसी कैद सकीना पे आई है वैसी इस पे ना आने पर। ये अहले बैत अथार की दुआएं जहन में रख, आज की दुआओं में मजलूम साहिबान ईमान को, बल्कि आम मुसलमानों को, बल्कि तमाम दुनिया के इंसानों को शामिल कीजिएगा और हमारी ये सारी दुआएं कबूल होंगी इन्हीं अहले बैत के तुफैल में और इमाम जमाना की बरकत से। खुदा बंदा आज की रात तो इमाम जमाना की रात है, हमारे जमाने के इमाम को हमसे राजी और खुश कर दे और उनके तुफैल हमारी तमाम वो दुआएं भी जो हम मांग रहे हैं और जो हम नहीं भी मांग रहे हैं, लेकिन तू तो जानता है ना, वो सारी दुआएं कबूल कर दे। जुमला मैंने क्यों कहा? लास्ट ईयर जिन्होंने भी अमल किए किसी ने भी कोरोना वायरस की दुआ मांगी होगी? नहीं मांगी होगी, पता ही नहीं था ये आने वाला, लेकिन अल्लाह को तो पता था ना। तो मैंने दुआ, जो दुआएं हम मांग रहे हैं वो भी, जो हम नहीं भी मांग रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम आने वाले, वो सारी दुआएं इनके जरिए कबूल कर दे। और खुदा बंदा, जुमला तो तेरी शान में गुस्ताखी है, इमाम जमाना के जरिए से हमारी दुआएं कितनी कबूल करता रहेगा? अरे अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं, अरे इमाम ही तो जाहिर कर दे ताकि दुनिया से सारे मसले हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और फिर बंदा मोमिन को ये दुनियावी मसलों में बार बार दुआ मांगने की जरूरत न पड़े। परवरदिगारा माह मुबारक रमजान की मेहनतों को हमारे कबूल फरमा। इस अल असर की रौनक का सबब बनने वाले जितने भी अफराद, फाउंडर, वॉलेंटियर्स, डोनेशन देने वाले और यहां पे आने वाले, परवरदिगारा इन सब को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज करते हुए अपनी और इमाम जमाना की खुशनुदी इनको अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक गुजारिश, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जैसा मैंने कहा कि एक मोमिनों को भी आजकल आज की रात बहुत ज्यादा याद करना। अल असर सेंटर के बानी मोहतरम जकी पंजू साहब एक मुख्तसर सा खिताब करना चाहते हैं आप लोगों से। ये इसको आप तकरीर का भी पार्ट समझिए और आमाल का भी, उसको आप बहुत तवज्जो से सुनिएगा अपनी। अगर जो लोग यहां नहीं है, जहां आवाज जा रही है अपनी जगह से हिले नहीं, उसके बाद फिर ठीक 8 मिनट का गैप दिया जाएगा जिसमें आपको वजू करना है, जहां नमाज का इंतजाम करना है, कुरान का इंतजाम करना है, और फिर आज की रात के आमाल शुरू होंगे। जब शुरू होंगे आमाल तो उन आमाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस वक्त कराऊंगा। तो अब मोहतरम जकी पंजू साहब का खिताब शुरू हो रहा है, जिन्होंने अपने वालिद मरहूम के ख्वाब को पूरा करते हुए अल असर सेंटर को बनाया तन तना, और इसको चला भी रहे हैं इसी शान के साथ। अब आप इनका बयान सुनिए।
अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सर, अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स सिस्टर्स, अस्सलामुअलैकुम मम्मी। ब्रदर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का, बस ये गुजारिश है कि मैं सिर्फ थैंक्स के लिए आया हूँ यहाँ पर आप लोग का। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा मौलाना सादिक साहब का, जो हमारे रेसिडेंट आलिम हैं अल असर के और इल्म का ख़जाना है माशाल्लाह हमारे साथ। मैं मौलाना इदरीस साहब का थैंक्स करूंगा, जिन्होंने यूथ के प्रोग्राम सारे हमारे संभाले हुए हैं, मदरसा है अल असर का उन्होंने संभाला हुआ है, कुरान की कंपटीशन करा रहे हैं। और मैं मौलाना मैं जनाब अली सदर का थैंक्स करूंगा, जो हमारे साथ काफ़ी दूर से रोज़े में उन्होंने हमें नवाखानी कराई। और मैं अपने जजेस का सलाम थैंक्स करूँगा, कि जिसमें मैं सबसे पहले वॉलंटियर्स जो जजेस हमारी जो लेडीज़ हैं उनका नाम लूँगा, सिस्टर कुमैल मासूमा कुमैल भाईदी, सिस्टर जरीना इदरीस हसन, सिस्टर्स सबा रुबा सॉरी, और मेरे जो जेंट्स के जजेस थे जो रमज़ान में उन्होंने हमारे साथ हेल्प करी कुरान कंपटीशन के लिए, उनका थैंक्स करूँगा। और हमारे जो टीचर्स हैं अल असर के मदरसे को जो संभाल रहे हैं, स्पेशली फास्टिंग में वो अपनी क्लासेस जूम के करा रहे हैं, तो उसका थैंक्स मैं करूँगा। और इसके बाद मैं अपने वॉलंटियर्स का करूँगा थैंक्स, जिसमें मैं सिस्टर से स्टार्ट करता हूँ। मेरी वाइफ का मैं थैंक्स करूँगा, जो हमेशा मेरे साथ होती है, फिर सिस्टर आलिया है, सिस्टर कौसर है, सिस्टर सना सिस्टर है, इस दौरान हमारे साथ रहे, बाकी भी वॉलंटियर्स हमारे थे, और मैं अपने जेंट्स वॉलंटियर्स का थैंक्स करूंगा जो कैमरामैन थे, सराउंड सिस्टम के थे, मैं थैंक्स करूंगा मुमताज़ भाई का, मैं थैंक्स ज़हीर भाई का करूंगा, जाफ़र का, मोहसिन भाई का, इमरान भाई का, मैं अपने बेटे का थैंक्स करूंगा अमीर हमज़ा ज़की का, और इसलिए मैंने कहा कि छोटा सा ये थैंक्स का अप्रिशिएट है, और बोल दिया मोहसिन भाई का, मैंने सही मोहसिन भाई का थैंक्स करेंगे, और सबसे पहले इससे बड़ा थैंक्स मैं करूंगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जिन्होंने हमें परमिशन दी कि यहाँ पर आके हम लाइव रिकॉर्डिंग करवा सके, उनका बहुत थैंक्स है, और दूसरा जो परमिशन हमें दी 10 गैदरिंग के लिए, और हमने अल असर में जितने भी प्रोग्राम करे हैं उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ किए हैं, हमने वही डिस्टेंस रखा है जो डिस्टेंस गवर्नमेंट ने कहा उससे ज़्यादा ही हमने रखा है, हमने सैनिटाइज़र भी रखे हैं फ्रंट में, जो भी मेंबर्स आ रहे हैं हमारे वॉलंटियर हो हम सैनिटाइज़र यूज़ करके एंटर होते हैं, और मैं अपनी वालदा और वालदैन का थैंक्स करूंगा जिन्होंने मुझे ये तौफीक दी और जहां तक मेरी परवरिश करी कि मैं यहां तक पहुंच सका, बहुत बहुत शुक्रिया, और अब मैं उन लोगों का थैंक्स करूंगा जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन में बहुत काम किया, लास्ट ईयर हमें $19,000 मिले थे राशन अपील में, अब तक कुछ हमारे पास 5,000 अबव हो चुके हैं राशन के अपील के लिए, लास्ट दफ़ा हमने कंट्रीब्यूट किया था पाकिस्तान में, इंडिया में और अफ्रीका में, इस साल भी हम इंशाल्लाह यही करेंगे, जैसे हमारे मोहतरम है शबीर अलादीना, उन्होंने मुझसे कहा है कि अफ्रीका के लिए काफ़ी वर्ल्ड फेडरेशन कर रही है, इस दफ़ा फंड हमारे पास कम आए हैं 5,000 अबव, तो शायद हम दोनों कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इंडिया और पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी हमारे मेम्बर्स हैं, मैं इनका थैंक्स करूंगा, और मेरी गुजारिश है सिर्फ अब एक ही मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो मेन मेन पॉइंट में से एक पॉइंट मेरा था कि प्लीज़ हमें अल्लाह ने नेमत करी दी है अल असर के नाम पे, मैं सिर्फ ज़रिया था हमेशा मैंने आप लोगों से कहा, तो प्लीज़ कोरोना वायरस से खौफजदा ना हो, जैसे मैंने एक दफ़ा मौलाना सादिक साहब की मजलिस में सुना था कि ऑफकोर्स ट्रेन के सामने आ जाना और कहना कि अल्लाह के हाथ में मेरी ज़िंदगी है, वो भी मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, कम से कम इस दर को जिस दर से हमें शफा मिलती है उसे उजाड़े ना, वीरान ना करें, यहाँ आए, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन देते रहेगी, आज हमें 10 की है, 10 लोगों की, अब इसके बाद हो सकता है हमें 40 मिले, 50 मिले, 100 मिले, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर्स हमारे पास, प्लीज़ यहाँ पर आए, इस दर को आबाद करें। मुझे याद है कि मुझे मेरे पास इतना इल्म नहीं है, मैं तालिबन भी अपने आप को नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं दीन सीख रहा हूँ मौलाना साहब की उसमें, यहाँ पर उर्दू मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ जब भी यहाँ पर आए सोचें कि हम अपनी जॉब्स पे जाते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाते, हम इन दर को क्यों उजाड़े और क्यों हमें इन्हें वीरान कर दें। मैं हमेशा सुना करता था अपने दोस्तों से कि घरों में मजालिस आप लोग इसलिए रखते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि वहाँ पर इमाम आएगी, बीबी आएगी, फरिश्ते आएगी, इसलिए आप अपने घरों में मजालिस रखते हैं। तो आज मैं यही कहूँगा, ये सेंटर हम सबका है अल असर, ठीक है, मैं सिर्फ इसका जरिया था, क्यों ना हम जैसे ही हमें परमिशन मिलते जाए इस सेंटर में आप लोग आए, खौफजदा ना हो मौत से, ऑफ कोर्स हम जब आएंगे यहाँ पे हमने सैनिटाइजर रखे, हमने वाइट शीट्स पे हम बैठते हैं, ठीक, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस हमने वही फासला रखा है, उससे ज़्यादा रखा है, तो प्लीज़ इस खौफ से ज़्यादा ना हो कि घरों में बैठे रहें और ये सोचें कि सिर्फ हम ग्रॉसरी की शॉपिंग कर सकते हैं या हम अपनी जॉब के लिए जा सकते हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। यहाँ पर आने से मुझे जितना अकीदा है मेरे इमाम पे और मेरे अल्लाह पे कि मौत जो लिखी है वो आएगी, ऑफ कोर्स वही बात है कि हम खुदकुशी ना करें, लेकिन हम डिस्टेंस से यहाँ पर आए और इस सेंटर को आबाद रखें हमेशा। कल हमारे मौला का जनाजा था, एक ताबूत था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम इन इन रातों को इस सेंटर को इनकी लाइटें बंद कर दें और हम ही कहते हैं कि यहाँ पर इमाम आएगी, हमारी बीबी आएगी, हमारे फरिश्ते आएंगे, तो किस तरह हम इस सेंटरों को ताले लगा दें और ये सोचें कि इमाम यहाँ नहीं आएगी, हम घरों से कर लें। जैसे मेरे रिस्पेक्टेबल मौलाना साहब सादिक साहब, मैं दोबारा नाम लूँगा, मुझे पता है कि वो खफा हो जाते हैं उनकी तारीफ से, लेकिन तारीफ के काबिल मैं नहीं हूँ, उनको मैं क्या सिखाऊँ, हर पूरी दुनिया जानती है इनकी शख्सियत को, वो इस बीमारी में भी अपने शुगर की लेवल की वजह से भी यहाँ पर हमेशा आते रहे, क्योंकि अल असर का जो मेंबर है वो मौलाना साहब का है, उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा कि मैं घर से रिकॉर्डिंग कर लूँगा, वो हमेशा यहाँ पर आए, सो बहुत थैंक्स इनका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे आलम दीन यहाँ आ सकते हैं तो प्लीज़ मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब जैसे ही हमारा सेंटर खुलेगा यहाँ पर आना स्टार्ट करें। आज 10 हैं, कल 20 हो गए, 25 हो गए, 50 हो गए, बढ़ते रहेंगे, आते रहें, और वही सोशल डिस्टेंस का जो गवर्नमेंट ने कहा है उसको फॉलो करें। बस मुझसे आपसे ये गुजारिश है, और हमेशा मैंने आप लोगों से एक चीज़ मांगी है, और उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने डोनेशन दिया राशन के फंड के लिए, ये सारा फंड। मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही चीज़ मांगी है, प्लीज़ एक सूरह फातिहा मेरे वालिद के लिए, मौलाना साहब के फैमिली के महरूमिन के लिए, और हम सब महरूमिन के लिए। स्पेशली एक हमेशा रिक्वेस्ट आई है मुझे मौलाना मुर्तज़ा ज़ैदी के साहबजादे जो थे उनके लिए, और सफदर भाई के महरूमिन के लिए, मौलाना शेख सिदरीस के महरूमिन के लिए, और हम सब के महरूमिन के लिए एक सूरह फातिहा। जज़ाकअल्लाह ब्रदर। और आखिरी जुमला कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो अलसर के हिसाब से, कभी टाइमिंग में हम लेट हुए हैं तो हमें उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ आप लोगों से, या कभी आवाज़ इको हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हमने जो भी किया अनजाने में किया। थैंक यू ब्रदर, अल्लाह हाफिज़।